الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں آپ کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت سے کرانا چاہتی ہوں، اور اس درمیانے عشرے میں روزانہ ہی ہم ملیں گے کسی ایسی ہستی سے جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے سبق لے سکیں. وہ پیغمبر نہیں، ان پر وحی نہیں اترتی، وہ آسمانوں کی سیر کر کے نہیں آئے، مگر ان کے زہد اور تقویٰ کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. اور ہم کیوں جانیں گے ان کے بارے میں، کیوں ملاقات کریں گے ان سے؟ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو، ہم ان سے سیکھیں. یہ وہ ہستیاں تھیں جو واقعی اس قابل تھے کہ ان کو وی آئی پیز کہا جا سکے، ان کو سیلیبریٹیز کہا جا سکے. شاید آج ایسے لوگ کہیں نظر نہیں آتے. ان کو دیکھ کے ہم ان سے خود کو کمپیئر کریں گے کہ ہم آج کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور نیک لوگ اصل میں ہوتے کیسے ہیں. اور یہ ایک تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ان سے ملاقات کی ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو 100,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے، جو دنیا میں مختلف خطوں میں پھیل گئے تھے، اور ہزاروں لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا، ان سے سیکھا، ان کی زیارتیں کی، ان کی صحبتیں اٹھائیں. اور تابعین کا دور 150 ہجری میں ختم ہو گیا تھا. تو چلتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں آج جس شخصیت کے ساتھ. ان کا نام ربیع بن خثیم ہے. حضرت ہلال بن اصاف نے اپنے مہمان منظر سے کہا کہ میں آپ کو اپنے شیخ ربیع کی زیارت کے لیے نہ لے چلوں. یعنی ہلال کے پاس منظر جب آئے تو انہوں نے کہا چلیں میں آپ کو اپنے شیخ کے پاس لے کر چلتا ہوں. وہ بھی ملاقات کرنے جاتے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنے چلتے ہیں. اور کیوں جانا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں تاکہ کچھ گھڑی کے لیے ایمان اور یقین کی باتیں کر لیں. تو منظر نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، میں تو کوفہ سے آیا ہی اس لیے ہوں تاکہ آپ کے شیخ سے کی زیارت کر سکوں. تو کہتے ہیں لیکن کیا ہمیں زیارت کی اجازت مل جائے گی؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب سے ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے وہ اپنے گھر کے ہو کے رہ گئے ہیں، ہمیشہ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. ہلال کہنے لگے بات تو یہی ہے، لیکن جب وہ کوفہ میں تھے تو ان کا طرز عمل ایسا ہی دیکھنے میں آیا، لیکن بیماری نے ان میں کچھ تبدیلی پیدا نہیں کی ہے. منظر نے کہا تو پھر ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو بڑے بڑے شیخ ہوتے ہیں ان کے مزاج بڑے نازک ہوتے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ میں اس دوران ان سے کچھ سوالات بھی کروں یا چپ بیٹھوں اور جو وہ بات کریں تو بس وہی سنوں؟ تو ہلال فرمانے لگے اگر آپ ربیع بن خثیم کے پاس ایک سال بھی بیٹھے رہیں تو وہ بولیں گے نہیں جب تک آپ خود نہیں ان سے بات کر لیتے. وہ کبھی بھی بات کرنے میں پہل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کلام جو ہے وہ ذکر الہی ہوتا ہے اور وہ خاموشی میں غور و فکر کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی بولتے نہیں زیادہ، کوئی بات ان سے کرے گا تو اس کا جواب دیں گے، ورنہ خاموش رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے. ہمیں اسی لیے تو وقت نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، کیونکہ ہمارے زبان کبھی بند ہوگی تو ہم ذکر الہی کریں گے. और हर बात जुबान चलती रहे, कोई ना कोई हम बात करते रहेंगे, तो फिर जाहिर है जिक्र का वक्त कहाँ से आएगा। तो मुंजर ने कहा, फिर आइए अल्लाह का नाम लेकर उनके पास चलते हैं। दोनों शेख साहब के पास गए और सलाम अर्ज किया और पूछा, आपका क्या हाल है? फरमाते हैं, हाल क्या पूछते हो, ऐसे कमजोर का और गुनाहगार का जो अपने अल्लाह का रिज़्क खाता है और अपनी मौत का मुंतजर है। हिलाल बोले कि कुफा में एक बड़ा माहिर तबीब आए हैं, इजाज़त हो तो इलाज के लिए उनको बुला लें। फरमाए, हिलाल मैं जानता हूँ कि दवा बरहक है, इलाज कराना सुन्नत है, लेकिन देखो ना आद समूद और इनके दरमियान जो कौमी है, असहाब रस और जितनी भी कौमें हैं, मैंने इनके हालात के बारे में सोचा और उनके पास बहुत दुनिया का माल असबाब था, फिर भी उनके अंदर हिर्स थी। वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे, साहिब हैसियत थे, उनके भी माहिर तबीब थे, वो लोग भी बीमार होते थे, लेकिन अब ना मुआलिज रहे ना मरीज, सब फना हो गए, उनका नामो निशान भी नहीं रहा। फिर गहरी लंबी सोच के बाद फरमाया, हाँ एक बीमारी ऐसी जरूर है जिसका इलाज मैं कराना चाहता हूँ। तो मुंजर ने बड़े अदब से पूछा, वो कौन सी बीमारी है? फरमाते हैं, गुनाह। पूछा, इसका इलाज किस दवा से किया जाए? फरमाया, इस्तिग़फ़ार से। मुंजर ने पूछा, शिफा कैसे होगी? फरमाया, ऐसी सच्ची तौबा की जाए कि वो गुनाह फिर दोबारा ना। फिर कहते, हमारी तरफ गौर से देखा और फरमाया, लेकिन जो छुपे हुए गुनाह किए गए वो लोगों की नजरों से तो छुप जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने वो जाहिर होते हैं, क्योंकि उसके सामने कोई चीज छुपी नहीं है। वो अल्लामुल गुयूब है, वो सीनों के भेद भी जानता है। छुप के गुनाह करना खतरनाक बीमारी है, इसकी दवा तलाश करो। तो मुंजर कहने लगे कि आप ही बता दें उसकी दवा क्या है। फरमाया, खालिस और सच्ची तौबा। फिर जारो कदार रोने लगे, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग गई। मुंजर ने ये अजीब मंजर देखकर कहा, बड़ा ताज्जुब है, आप रो रहे हैं? आपकी तो इबादत, तकवा, इखलास का हर तरफ चर्चा है। फरमाया, सद अफसोस, भला मैं क्यों ना रो? मैंने अपने से पहले इतनी अजीम कौम को देखा है कि हम उनके मुकाबले में छोटे बोने नजर आते हैं। यानी किन को देखा हुआ? सहाबा कराम को। कहते हैं, हजरत हिलाल के हम बैठे हुए थे कि उनसे बातें कर रहे थे कि इतने में उनका बेटा अंदर आया। उसने बड़े अदब से सलाम किया, फिर कहा, अब्बा जान, अम्मी ने आपके लिए बड़ा ही एक उम्दा लजीज पकवान तैयार किया और वो चाहती है कि आप ज़रूर खाएं, इजाज़त हो तो मैं ले आऊँ? फरमाया, अच्छा ले आओ। जब बेटा वो खाना लेकर आया, लाने के लिए कमरे से निकला, तो एक सवाली जो था उसने दरवाज़ा खटखटाया। आपने कहा, उसको अंदर बुला लो। कहते, मैंने देखा कि एक बिखरे हुए बाल हैं और बूढ़ा फटे पुराने कपड़े पहने हुए झूमता हुआ अंदर आ रहा है, मुंह से रालें टपक रही हैं, तो जैसे कोई पागल सा होता। वो सेहन में आके खड़ा हो गया। तो मैं अभी हैरान ही था इस बेचारे को देख के कि इतने में शेख साहब का बेटा एक बड़े थाल में वो मीठा पकवान ले आया, कोई डिजर्ट था। शेख ने अपने बेटे से कहा, ये थाल जो है इस सवाली के सामने रख दो। उसने हुक्म की तामील करते हुए थाल उसके सामने रख दिया, तो वो जो फकीर था वो उस पर टूट पड़ा और हालत ये थी कि उसकी रालें खाने पे गिर रही थी और वो खाने में जुता हुआ था, यहाँ तक कि उसने सारा थाल ख़त्म कर दिया। बेटे ने बड़े अफसोस से कहा, बजाना अल्लाह की रहमतें हों आप पर, अम्मी ने तो बड़े ही शौक से ये पकवान आपके लिए बनाया था और वो बहुत चाहती थी कि आप ये खाएं, लेकिन आपने एक ऐसे आदमी को खिला दिया जिसको यही नहीं पता कि उसने क्या खाया और उसका क्या मजा है। तो शेरशाह फरमाने लगे, बेटा अगर ये नहीं जानता तो क्या हुआ, हमारा परवरदिगार तो जानता है ना। सुभान अल्लाह। हिलाल कहते हैं, मैंने देखा कि जोहर का वक्त करीब आ रहा है, तो मैंने अर्ज किया मुझे कोई नसीहत करें। फरमाया, हिलाल लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुन के कहीं धोखा ना खा जाना, लोग तो सिर्फ तेरे जाहिर को देखते हैं, उनको तेरे बातिन का क्या पता। देखो मेरी बात पल्ले बांध लो, तुम अपने अमल की तरफ रवां दवां रहो, और हर वो अमल जो अल्लाह की रजा के लिए ना किया जाए वो बेकार है, वो अकारत है, उसकी कोई कदरों कीमत नहीं। मुंजर ने कहा, आप मुझे भी कुछ नसीहत करें। फरमाया है मुंजर, कभी ऐसा ना कहना मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूं, इसलिए कि अगर तुमने फिर रुजू नहीं किया ना तो ये झूठ हो जाएगा, बल्कि हमेशा दुआ करते रहो, अल्लाह मुझे अपनी तरफ रुजू करने वाला बना दे, मुझे माफ कर दे। तो इस तरह कभी तुम झूठे नहीं होगे। ऐ मुंजर, अच्छी तरह जान लो, इंसान जितनी भी बातें करते हैं उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, और खैर मांगना और शर से पनाह मांगना और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना और कुरान मजीद की तिलावत करना, इसके अलावा किसी और बात में खैर और बरकत नहीं है। दीन की बात करना वरना खामोश रहना। तो कहते हैं मुंजर कि हम इतनी देर आपके पास बैठे हैं, आपने कोई शेर नहीं पढ़ा, हालांकि आजकल तो सभी जो बड़े बड़े लोग हैं वो शेर जरूर पढ़ते हैं अपनी जब भी बात कर रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजह है। शेर साहब ने कहा, जो भी इस दुनिया में कहा जाता है इसको फौरन लिख लिया जाता है और वो कयामत के दिन पढ़ के सुनाया जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे नामाए आमाल में कोई शेर लिखा हो और कयामत के दिन वो मुझे पढ़ के सुनाया जाए। फिर फरमाया, सुनो अपनी मौत को कसरत से याद किया करो, वो हर दम तुम्हारी मुंतजर है गैब में, और जब कोई प्यारा बड़ी देर के लिए नजरों से ओझल हो जाए तो इसकी वापसी का वक्त करीब आ जाता है, और घर वाले हर दम उसकी राहें तकते रहते हैं। समझ गए आप क्या कह रहे हो। ये कह के इतना रोए कि आंसू की झड़ी लग गई। फिर फरमाया, कल जब शदीद जलजले में जमीन को रेजा रेजा किया जाएगा और परवरदिगार गजब में होगा, फरिश्ते सफ बांधे खड़े होंगे और जहन्नुम को लाया जाएगा, बताओ फिर हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकेंगे। तो हिलाल बयान करते हैं कि जब उन्होंने बात खत्म की तो उधर जोहर की अजान होने लगी। बेटे ने कहा, आए चले, अल्लाह का बुलावा आ गया। और अब अपने बाप को सहारा देने में हमारा साथ दें। दाएं तरफ से बेटे ने सहारा दिया, बाएं तरफ से हमने, और उनकी उनको मस्जिद की तरफ ले चले। अब इनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ हुआ, और हालत ये थी कि उनके दोनों पांव जमीन पे घिसट रहे थे। तो मुंजर ने कहा कि आप माजूर हैं, अल्लाह की तरफ से आपको रुख्सत है, आप घर में क्यों नहीं नमाज पढ़ लेते। तो फरमाया, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मुअज्जिन ने कहा है, मैंने सुना है वो कहता है हय्याल अल-फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। जो शख्स कामयाबी की तरफ बुलाए उसकी आवाज पे लब्बैक कहना चाहिए, और घुटनों के बल भी चल के क्यों ना जाना पड़े तो जाना चाहिए। ये रबी बिन खसीम है, ये बड़े ताबईन में से हैं, ये सैयद घराने से इनका ताल्लुक था, क्योंकि इनका नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके मिलता था। इनका हाल यानी अपनी जवानी में भी क्या था कि रात के वक्त इनकी जब वालदा सो जाती थी, सुबह उठती तो क्या देखती कि उनका बेटा घर के कोने में हाथ बांधे खड़ा हुआ और नमाज में मशगूल है। माँ मोहब्बत से पूछती थी, बेटा तुझे क्या हुआ है, क्या नींद नहीं आती, अब तो सो जा। जवाब देते थे अम्मा जान, भला वो आदमी कैसे सो सकता है जिस पे रात छा गई हो और उसको दुश्मन के हमले का अंदेशा हो। ये सुन के बूढ़ी माँ के आंसू निकल आते थे, बेटे को दुआएं देती थी। तो ये जब अभी लड़के थे, जब जो और जवान हुए तो इनका जुहद और तकवा भी बढ़ गया। और इनका हाल ये होता था कि रात में जब सब लोग सो जाते थे, इतना अल्लाह ताला के सामने रोते थे, इतना रोते थे कि इनकी गिगी बन जाती थी। वो आगे बोल नहीं सकते थे, इतना रोते थे। तो जब बूढ़ी माँ को अपने लाडले बेटे की ये हालत नजर आती थी तो बड़ा तरस आता था। वो आवाज देती थी, मेरे बेटे, माँ सदके तुझे क्या हुआ है? तेरे से कोई जुर्म हो गया क्या? किसी को कत्ल कर दिया है? तो इतना तुम तड़प रहे हो, आप सोचें कि आप अपने बच्चे को देख रहे हैं, तड़प रहा है, रो रहा है, रो रहा है, और इस कदर रो रहा है, तो क्या माँ का हाल होगा? माँ घबराहट में पूछती थी, बेटे मुझे बताओ कौन है मकतूल, किसको कत्ल किया है तुमने? हम उसके वारसों से जाके मिन्नतें करें कि वो तुझे माफ कर दे, अगर वो तेरी ये हालत देख ले कि तू जैसे आहें सिसकियां ले रहा है, जैसे रो रहा है, तो मुझे पता है वो जरूर तुझे माफ कर देंगे। कहते थे, अम्मा जान किसी से बात करने की जरूरत नहीं, मैंने तो अपने आप को कत्ल किया। तो माँ पूछती, कैसे? फरमाते, गुनाहों से अपने आप को कत्ल कर दिया। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, क्या इनकी रातें थी और क्या इनके रोने थे। और ये वो हैं जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनके शागिर्द थे, और वो इनको ऐसे अपने साथ रखते थे और ऐसे इनसे मोहब्बत करते थे जैसे एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है। और वो खुद फरमाया करते थे इनको देख के कि अगर आपको अल्लाह के रसूल देख लेते तो यकीनन आपसे मोहब्बत करते। और ये भी फरमाया करते थे कि अरबी, जब भी मैं तुझे देखता हूँ मुझे अल्लाह की बारगाह में खुशू व खुजू करने वाले याद आ जाते हैं। इतना इनका खुशू था। अब्दुर्रहमान बिन अजलान बयान फरमाते कि मैं एक रात इनके पास सोया हुआ था, जब इनको यकीन हो गया कि मैं गहरी नींद सो गया हूं तो नमाज पढ़ने शुरू कर दी, नहीं किसी को पता ना चले। और नमाज में एक आयत ऊंची आवाज में पढ़ने लगे, उसका तर्जुमा आयत का ये कि वो लोग गुमान करते हैं जिन्होंने गुनाह किए कि हम उनको ऐसा कर देंगे जैसे ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले, बराबर है इनका जीना और मरना, बहुत बुरा है जो वो कहते हैं। यानी क्या वो ये समझते हैं जो गुनाह करने वाले हैं कि अल्लाह ताला उनको उनके बराबर कर देगा जो ईमान ला के नेक अमल करने वाले? और बार बार यही आयात पढ़ते जाते हैं, हजारों कतार होते जाते के मुतालिक बहुत सारे वाकयात मशहूर हैं खौफे खुदा के। इनके करीबी साथी एक दफा अपने साथियों के साथ जा रहे थे तो दरियाए फुरात के किनारे पे वहां पे एक जलती हुई लोहे की भट्टी को देखा जिसमें से आग के शरारे ऊपर उठ रहे थे। आग में तेजी करने के लिए वो पत्थर का कोयला डालते थे इसमें। तो जब इन्होंने आग का ये मंजर देखा, वहीं ठहर कर जिस्म पे इतना लर्जा तारी हो गया, इस तरह कपकपाए कि साथी भी घबरा गए कि इनको क्या हो गया। और इस मंजर को देख के कुरान मजीद की ये आयत पढ़ने लगे जिसका तर्जुमा यह है कि जब वो उनको दूर से देखेगी, कौन? जहन्नम। जब जहन्नम उनको दूर से देखेगी तो ये उसका गुस्से से बिखरना और धाड़े उसकी सुनेंगे। और जब ये जहन्नुम के किसी तंग जगह में कस के मशके कस के फेंक दिए जाएंगे तो वहां अपने लिए मौत को पुकारेंगे। ये पढ़ते पढ़ते गश खाया और गिर गए। और इनके साथी इनको घर उठा के लेकर आए। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौत के इंतजार में गुजार दी और अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए जैसे हर वक्त तैयार है जब मौत का वक्त करीब आया तो उनकी बेटी आहुजार रोने लगी। उसको रोता देख के फरमाया, चुप कर जा बेटा, रोती क्यों है, तेरे बाप को तो बहुत बेहतर चीज मिल रही है। और फिर इनकी रूह परवास कर गई। ये हैं बड़े लोग, ये हैं अजीम लोग, ये हैं वो लोग जिनको हमने देख के और अपनी जिंदगी को करेक्ट करना। आज ऐसे लोग ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसी हस्तियों से हमने सीखना है। हम अपनी नेकी पे बड़ा जोम करने लगते हैं, थोड़े थोड़े काम करके। देख लो उन्होंने क्या नसीहत की, कभी लोगों की तारीफों में ना आ जाना। लोगों को क्या पता, वो तो आपका जाहिर देखते हैं, उनको आपकी बातें का क्या पता। आके जब इनके हालात पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि हमारे ईमान का क्या हाल है, हमारे अमल का क्या हाल है। हम भी कभी रातों को रोए हैं, वो इतनी अजीम हस्तियों के कैसे रोते थे, कैसे डरते थे, कैसे उनको आग देख के जहन्नुम याद आ जाती थी, कितना तड़पते थे। हमें अपने गमों पे तो रोना आता है, अपनी फिक्रों पे, अपनी परेशानियों पे तो हम रोते हैं। कितनी दफा हम अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही का सोच के रोते हैं कि उसके आगे खड़े में जहन्नुम लाई जा रही है। कितना उसका सोच के रोया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे। सर इंशाल्लाह ताला ये सब 10 दिनों में इंशाल्लाह हम ऐसी किसी एक हस्ती के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। आज पीर का दिन है और आज के दिन हमारे नामाए आमाल अल्लाह ताला के आगे पेश होने। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कीना परवर को माफ़ नहीं किया जाएगा, लिहाजा माफ़ करते हैं हम, दिल से निकाल दें। अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया, वल याफू वल यस्फाहू अला तुहिब्बुना यग़फिरल्लाहु लकुम। माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर दे। तो इंशाअल्लाह ताला अपनी माफ़ी का सोचना है, और इसके लिए अगर किसी को माफ़ करना पड़े तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अहले जन्नत की एक खूबी है कि वो मेहरबान है, वो नरम होते हैं। तो दिल की सख्ती को दूर कर दें, जुबान की सख्ती भी दूर करें। अच्छा, आज हम अपनी रात को सजाने के लिए जो काम करेंगे, और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं करना, मेरी आप लोगों को नसीहत है, अपनी पूरी जिंदगी आप इस काम को कभी ना छोड़ना, कभी ना छोड़ना इस काम को। और ये है सूरह मुल्क की तिलावत। हर रात को आपने सूरह मुल्क पढ़ के सोना, जिंदगी भर के लिए अपना ये एक तरीका बना लें। रात सोना नहीं है जब तक मैं ये सूरत ना पढ़। क्यों, हर काम का जवाब होना चाहिए ना, क्यों पढ़े? इसलिए कि ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अजाब कब्र से बच जाएं। कब्र का अजाब बड़ा ही सख्त है, बड़ा ही सख्त है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र के अजाब से पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल कब्र। ये दुआ किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सलाम फेरने से पहले। और कब्र में कोई हमारा साथी नहीं होगा, कोई हमारा प्यारा हमारे पास नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैंने आपको, रमज़ान शुरू हुआ था तो आपको मैंने कहा था कि हर दिन अगर इसकी एक आयत भी आप याद कर लेंगे तो 30 आयतें 30 दिनों में सारी याद हो जाएगी। बहुत आसानी हो जाती है फिर पढ़ने में, आप जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इस आयत, इस सूरत को हमने रोज़ाना पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था सूरह मुल्क और सूरह सज्दा पढ़ के सोया करते थे। तो दूसरी चीज़ जो बहुत ही आसान है, जो आपने रात को ज़रूर करनी है, वो है आयतल कुर्सी पढ़ के सोना। इससे क्या होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। यानी एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है कि इसकी हिफाजत करनी है सारी रात। तो समझ लें हमें एक बॉडी गार्ड मिल गया। और शायद सुबह तक ऐसे शख्स के करीब नहीं आ सकता। तो अब ये कितनी आसान है ना पढ़नी, एक दफा ही तो पढ़नी है, कुछ कौन सा 100 दफा पढ़नी है, एक दफा पढ़नी तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। आप लेट भी गए बिस्तर में तो पढ़ लें। तो ये आज दो काम कम अज कम आज जरूर करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाकी भी बातें बताऊंगी। इसी तरह नमाज के हवाले से कुछ बात जरूरी करना चाहती हूँ आपके साथ। ये कि एक दफा एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने पहले जाके नमाज पढ़ी फिर आपके पास तशरीफ लेकर आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ वापस जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया फिर उसने वापस नमाज पढ़ी, फिर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ वापस तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर गया उसने फिर पढ़ी, फिर वापस आया तो फिर आपने ये फरमाया। तो उसने कहा कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो पढ़ रहा हूँ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको नमाज बताई कि कैसे पढ़नी है। असल में वो नमाज तेज़ी से पढ़ रहा था, तो इसको बताया कि जैसे जब रुकू में जाओ तो इतनी देर तक ठहरे रहो कि सारी हड्डियां जोड़ अपनी जगह पे आ जाए, फिर खड़े हो तो फिर थोड़ी देर यानी अपनी जगह पे सब जोड़ आ जाए, फिर उसके बाद सजदे में जाओ तो तब जब पूरी बॉडी आपकी एक पोजीशन में आ गई है तब तक उसमें रहो, ठहरे रहो। ये नहीं कि अभी रुकू में गए हैं तो अभी गए नहीं तो फिर खड़े हो गए, अभी खड़े नहीं हुए तो फिर सजदे में चले गए, अभी सजदे में जाके माथा जमीन पर रखा ही नहीं तो फिर उठ गए, फिर उठ के बैठे भी अभी पूरे नहीं है तो फिर सजदे में चले। ये नमाज समझ ले है ही नहीं, अदा ही नहीं हो रही आपकी। अल्लाह अकबर, जब रुकू से भी खड़े होते तो अभी पूरे खड़े भी नहीं हुए होते तो सजदे में चले जाते। तो अल्लाह माफ करे हमें अगर हमारी ऐसी नमाजें हुई तो फिर तो ये अदा ही नहीं हुई। ये कितनी इंपॉर्टेंट हदीस है। तो अगर आप ये मेक श्योर करेंगे ना कि हर जगह की तस्बीह हर जगह का जिक्र उस पोजीशन में करके जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता मैंने खड़े नहीं होना। जैसे अगर आप रुकू में गए हैं तो जब तक सुबहाना रब्बी अल आला आपने पूरी पढ़ नहीं ली कम से कम 3 दफा तब तक आपने उठना नहीं। ये नहीं कि आधी जाते हुए पढ़ रहे हैं आधी उठते हुए पढ़ रहे हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अभी वो अभी मुंह में ही है तो आप सजदे की तरफ भी जाना शुरू हो गए, नहीं खड़े हो के आराम से समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, इतनी देर तो लगेगी ना कहने में, आराम आराम से पढ़े। तो अल्लाह ना करे अगर हम ऐसी नमाजें पढ़ रहे हैं जो तेजियों वाली हैं कि जिसमें कहीं पता ही नहीं चल रहा कि इंसान किसी जगह पे तो सुकून में आए, कहीं सुकून है ही नहीं, सुकून होना चाहिए हर पोजीशन में, और अगर नहीं है तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। अस्तग़फिरुल्लाह। दूसरे ये कि नमाज में हमने हिलना नहीं होता। बस ख़वातीन जैसे कुरान पढ़ते हुए हिलती है ना आगे पीछे, वो सोचती नमाज में भी हमने हिलते रहना, कॉन्स्टेंटली नमाज में एक हरकत है। जबकि एक सहाबी रसूल के बारे में आता है कि वो नमाज ऐसे पढ़ते थे जैसे दरख्त की कोई शाख होती है, बिल्कुल कोई हिलजुल बिल्कुल साकित। और दूसरा जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं तो या तो आप मस्जिद जाए ही ना, अगर आपको ये डर है कि जो है किसी से मुझे कोई बीमारी ना लग जाए या कुछ है मैं साथ खड़ी होंगी तो फिर आप घर पे ही पढ़ लें। लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो सफ में गैप्स नहीं हो सकते, वरना शैतान आ जाता है और आप पर आपस में दिल फट जाएंगे। इसलिए हमारे दिल देखिए आपस में जुड़े ही नहीं होते, सफ़े हमारी मिली ही नहीं है। और इसीलिए इमाम साहब जो होते हैं वो नमाज शुरू कराने से पहले अगर आप गौर करें तो वो ये कहते हैं कि अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, सीधा करो एक तो, और सफ़ों के गैप जो है ना वो फिल अप करें। तो हमें इसकी परवाह नहीं होती, हर कोई अपना अपना जानवाज बिछा के वहां पे खड़ा हो जाता है दूर दूर खड़े में, वो दूर ही खड़े हो ना तो आप घर में ही पढ़ लें। इसी तरह ये बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है कि तहियतुल मस्जिद क्या हम असर के बाद पढ़ सकते हैं? बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ जवाल के वक्त नहीं पढ़ सकते। याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद वैसे नफल पढ़ने से मना किया हुआ है, लेकिन कोई सबब के नफल हो जैसे तहियतुल मस्जिद है या इसी तरह जैसे जनाजे की नमाज है या ऐसी कोई जो किसी का चीज़ का जो सबब होता है ना उसके तहत जो नवाफिल है वो पढ़ सकते हैं। तो तहियतुल मस्जिद आप पढ़ेंगे लेकिन जवाल के वक्त ही पढ़ेंगे। जवाल का वक्त वो है जब सूरज गुरूब होने के लिए शुरू हो जाता है, यानी आपकी मगरिब की अजान से कोई 5-7 मिनट पहले तक आप कुछ नहीं पढ़ सकते, फिर आप यानी सिद्धा नहीं कर सकते, तो उस वक्त नहीं करना, उससे पहले पहले तो आप कर सकते हैं। इस तरह एक बहुत जरूरी बात आप लोगों से आज करना चाहती हूँ, ज़कात के हवाले से। ये रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ, इनमें ज़कात दें या आप नमाजें पढ़ें या आप सदका करें, हर एक चीज़ का अजर कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं। तो ज़कात के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप लोग याद रखें कि जो ज़कात है ना, हम जो दे रहे हैं वो उस गरीब मोहताज परेशान हाल लोगों के तआवुन के लिए हमारे ऊपर फर्ज की गई है। अब ये पैसे उनके हैं, हमारे नहीं है, ठीक है, हमारे नहीं है, हम उनके पैसे उनको दे रहे हैं। जैसे मसलन आपने किसी से कर्ज लिया, अब आप कर्ज उसको अदा कर रहे हैं, ऐसे ही समझ लें, ये फर्ज कर्ज अदा करना है। अब बाज लोग बजाय पैसे देने के चीजें खरीद के देते हैं, मसलन है कि खाना पीना को ग्रोसरी ले दी, दवाइयां ले दी, कपड़े ले दिए, इस तरह जहेज की चीजें ले दी। ये आप नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पैसे उसके हैं, वो आप अपनी मर्जी से इसको खर्च करें जहां पे खर्च करना चाहता है। आप उसको कैश दे सकते हैं, कभी भी चीजें नहीं दे सकते। अब आप खुद ही अपनी मर्जी से राशन ले रहे हैं, आपको क्या पता उसको राशन की जरूरत है भी कि नहीं है, और हो सकता है अगर जरूरत हो भी तो उससे ज्यादा उसकी बड़ी जरूरत यह है कि उसने घर का रेंट देना है, वो घर से बेघर हो जाएगा अगर वो रेंट नहीं देगा। हो सकता है उसके घर का नलका खराब है, उसकी छत टपक रही है, उसने वो सही करानी, आप उसको राशन दिए जा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से ले लेगा उसने जो चीज लेनी होगी। तो उसके हाथ में पैसे दे, अनलेस के वो खुद कहे कि मुझे ये चीज आप जी ला के दे दें, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप ये चीज ला के दें, फिर तो आपको उसने एक तरह से नायब बना लिया ना, कि कोई भी आपको कहता है जी ये जाके मुझे बाजार से ला दो तो आप उसको ला देते हैं। तो इन पैसों से ना आप अफ्तारियां करा सकती हैं, ना आप खाने के ला सकते हैं, ना आप हज के टिकट लेके दे सकते हैं, ये जायज नहीं है। हाँ, आप उनको दे दें, वो अब इसमें से जो भी करें, या वो आपको अगर कहें तो फिर आप करते रहें उनके लिए जैसे भी आपको लगता है कि हाँ ये इस तरह से उनका पैसा वो आपको कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, तो अब ठीक है, उसकी अमाउंट है, वो आपको दे रहा है कुछ करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। और आज का जो जिक्र है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि जिनके ऊपर जादू हुआ हुआ है या जिनको खदशा है कि हमारे पर किसी ने जादू कर दिया है, वो ये जरूर करें, इसलिए कि इससे किसी के ऊपर जादू है वो भी खत्म हो जाता है, और आप जादू जिस पे नहीं हुआ हुआ वो भी महफूज रहेगा, कोई उसके ऊपर जादू कर नहीं सकेगा। ये जिन्नात वगैरह जो किसी में एंटर हो जाते हैं, ये भी नहीं हो सकेगा। अगर आप ये वजीफा करते हैं, अगर आप इसको हमेशा करते रहेंगे, कोई जिन्नी दाखिल हो सकता। तो बजाय इसके कि जादू के इलाज के लिए जादूगर के पास ही आप जाएं कि मेरा इसके इलाज करो, ये वजीफा करें। और ये वजीफा क्या है, सुबह को आपने जब आप अपने अज़कार करते हैं फजर के बाद, तो 100 दफा ये आपने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर आपने ये करते रहे ना, आप हफ्ता 10 दिन में ही आप देखेंगे अगर किसी के ऊपर जादू हुआ हुआ है तो उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो बाकी लोग हैं वो महफूज रहेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं फलां के ऊपर जादू हो गया, ऐसे हो गया, आप क्या करें, तो ये इसका इलाज है। और आज की जो दुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह ताला से आफियत और माफ़ी का सवाल किया करो,
क्योंकि ईमान और यकीन के बाद आफ़ियत से बेहतर चीज़ किसी को नहीं दी गई।
यानी इतनी ये ज़रूरी दुआ है इंसान के लिए। और आफ़ियत क्या है, यानी खैर मांगो अल्लाह ताला से हर चीज़ में खैर। तो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अल आफियत फि दुनिया वल आखिरा, अल्लाह दुनिया और आखरत में मुझे आफियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक अल अफवा वल आफियत, ए अल्लाह मैं तुझसे दरगुजर का और आफियत का सवाल करता हूँ, किस में, फी दीनी मेरे दीन में, वह दुनिया या मेरी दुनिया में, वह आली और मेरी फैमिली में, बाल बच्चों में, वह माली और मेरे माल में, सब में आफियत का सवाल और दरगुजर का सवाल आप करें। क्योंकि दीन दुनिया, दीन का पता नहीं होता, दीन से इंसान कब फिर जाए, दुनिया में भी पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी आ जाए या क्या आफतें आ जाए, या घर वालों में नहीं पता होता कि किस तरह की मुसीबत आ जाए या माल में कैसा नुकसान हो जाए, तो आफियत मांगे, हमेशा आफियत मांगे। अल्लाह मस्तर आवराती, अल्लाह मेरे ऐब ढांप ले। वह आमिर रवाती, अल्लाह मुझे खौफ से अमन दे दे, खौफ ज़दा चीज़ें जो हैं उनसे मुझे महफूज रख। अल्लाह महफ़ज़नी मिन बैन यदैया व मिन खल्फी, है अल्लाह मेरी हिफाजत कर मेरे सामने से, मेरे पीछे से, व अन यमीनी व अन शिमाली, और मेरे दाएं से और मेरे बाएं से, व मिन फौकी और मेरे ऊपर से, व उज़ भी अजमति का नुक्ताला मिन तहती, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ तेरी अजमत के जरिए कि मैं नीचे से हलाक की जाऊँ। यानी हर डायरेक्शन से अल्लाह ताला की हिफाजत पे आप आ जाएं और आप आफियत मांगे। हर वक्त आफियत मांगनी चाहिए कि अल्लाह कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बला ना नाजिल हो जाए, आफियत मांगे। अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
This session is no longer being recorded.